उर्वशी का काव्य रूप। आधुनिक हिंदी साहित्य संस्कृत काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र दोनों से पूर्णतः प्रभावित है। इसमें जहाँ एक ओर संस्कृत काव्यशास्त्र के नियमों का रूढ़िबद्ध पालन परिलक्षित होता है, वहाँ दूसरी ओर पाश्चात्य प्रभाव के अथवा प्रणेता की स्वच्छंदता के कारण रूढ़िमुक्त प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। फलतः आधुनिक हिंदी साहित्य की किसी भी कृति का काव्य रूप विवेचित करने के लिए इन दोनों दृष्टियों से विचार करना उपयुक्त ही नहीं, अनिवार्य भी है। रूढ़िबद्ध काव्य रूप। रूढ़िबद्ध काव्य रूप से तात्पर्य काव्य के उस वर्गीकरण से है जो संस्कृत काव्यशास्त्र में काव्य को पुरुष का रूप राजशेखर द्वारा 19वीं शताब्दी में ही दिया जा चुका है। तेषु सारस्वतेयो गृंद्यसामपि वंद्यः काव्य पुरुष आसीत। संभवतः इसी रूपक के कारण काव्य के वर्गीकरण के दो आधार निश्चित हुए। पहला, रमणीयता का आधार, इस आधार पर काव्य की आत्मा का विवेचन हुआ। दूसरा, स्वरूप अथवा बंध का आधार, इस आधार पर काव्य के शरीर का विवेचन हुआ। रमणीयता के आधार पर काव्य के तीन भेद किए: ध्वनि काव्य या उत्तम काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य या मध्यम काव्य, चित्र काव्य या अधम काव्य। पंडित राज जगन्नाथ ने चौथा भेद उत्तमोत्तम काव्य और माना, किंतु यह प्रचलित न हो सका। फलतः उपरोक्त तीनों भेदों को ही मान्यता मिली। स्वरूप अथवा बंध के आधार पर काव्य के दो भेद किए गए: श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य तीन भागों में बांटा गया: गद्य काव्य और चंपू काव्य। प्रबंध की दृष्टि से पद्य काव्य के दो रूप किए गए: प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। विस्तार की दृष्टि से प्रबंध काव्य को दो भागों में विभाजित किया गया: महाकाव्य और खंड काव्य। दृश्य काव्य के 10 भेद किए गए: नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम, इहामृग, अंक, वीथि और प्रहसन। रूढ़िमुक्त काव्य रूप। रूढ़िमुक्त काव्य रूप से तात्पर्य हिंदी साहित्य के उन काव्य रूपों से है जिनमें पाश्चात्य काव्यशास्त्र के प्रभाव अथवा प्रणेता की स्वच्छंद प्रवृत्ति के कारण रूढ़िबद्ध काव्य रूपों का नियमित परिपालन नहीं मिलता। हिंदी साहित्य में प्रचलित रूढ़िमुक्त काव्य में नाट्यात्मक स्वानुभूति प्रधान और आख्यान प्रधान ये तीन भेद प्रमुख हैं। नाट्यात्मक काव्य रूप के प्रमुख भेद हैं नाट्य महाकाव्य और गीत नाट्य। इन काव्य रूपों में से उर्वशी किसके अंतर्गत आती है? प्रश्न के उत्तर में 4 रूपों की संभावना होती है: महाकाव्य, नाटक, नाट्य महाकाव्य और गीत नाट्य। इन संभावित रूपों में से किसी एक रूप को स्थिर करने के लिए यह आवश्यक है कि इन रूपों का संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत किया जाए। महाकाव्य का स्वरूप। संस्कृत महाकाव्य में सर्वप्रथम आचार्य भामह ने महाकाव्य के जिस विवेचन का सूत्रपात किया था वह आचार्य विश्वनाथ में आकर पूर्णता को प्राप्त हो गया। आचार्य विश्वनाथ ने एतद् विषयक अपने पूर्ववर्ती सभी आचार्यों के मतों का समन्वय करके एक प्रकार से उनकी व्याख्या ही कर दी। परवर्ती आचार्य ही प्रायः उसी व्याख्या को इषत् शब्द भेद के द्वारा पुनरावृत्त करते रहे, अतः यहाँ पर केवल आचार्य विश्वनाथ का ही मत पर्याप्त होगा। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार महाकाव्य के निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं: पहला, महाकाव्य का नायक सुर अथवा प्रख्यात राजवंश से संबंधित कोई क्षत्रिय होना चाहिए। दूसरा, महाकाव्य में श्रृंगार, वीर या शांत रस में एक रस अंगी होना चाहिए, साथ ही अन्य रस और सारी नाटक संधियां होनी चाहिए। तीसरा, महाकाव्य की कथा वस्तु ऐतिहासिक तथा किसी महापुरुष के जीवन से संबद्ध होकर लोक प्रसिद्ध वृत्त होना चाहिए, जिसमें चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का वर्णन करके नायक को किसी एक की प्राप्ति हुई हो। चौथा, महाकाव्य के प्रारंभ में मंगलाचरण या वस्तु निवेश हो, कहीं कहीं दुष्टों की निंदा और सज्जनों की स्तुति की गई हो। पांचवा, महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए जो न तो बहुत दीर्घ हों और न बहुत छोटे। एक सर्ग में एक ही छंद का प्रयोग होना चाहिए और सर्गांत में वह छंद परिवर्तित कर देना चाहिए। एक ही सर्ग में अनेक छंद भी हो सकते हैं। सर्ग के अंत में भावी कथा का संकेत होना चाहिए। छठा, महाकाव्य में संध्या, सूर्य, चंद्र, रात्रि, प्रदेश, अंधकार, दिन, प्रातःकाल, मध्याह्न, मृगया, पर्वत ऋतु, वन उपवन, समुद्र, संभोग, विप्रलंब, मुनि, स्वर्ग, नगर, यज्ञ, संग्राम, यात्रा, विवाह, पुत्र जन्म आदि का वर्णन होना चाहिए। सातवां, महाकाव्य का नाम कवि, वर्ण विषय, नायक अथवा अन्य किसी आधार पर होना चाहिए। आठवां, महाकाव्य के सर्ग का नाम उस सर्ग में वर्णित विषय के आधार पर होना चाहिए। आचार्य विश्वनाथ ने महाकाव्य की जो विशेषताएं बताई हैं उन्हें दो वर्गों में रखा जा सकता है, स्थिर और अस्थिर। स्थिर विशेषताएं वे हैं जिनका पालन करना प्रत्येक महाकाव्य के लिए महाकाव्यकार के लिए अनिवार्य है। अस्थिर विशेषताओं पर अनिवार्यता का बंधन नहीं है। इस वर्गीकरण के अनुसार कहा जा सकता है कि नायक रस और कथावस्तु महाकाव्य की स्थिर विशेषताएँ हैं और शेष अस्थिर। अतः यहाँ पर इन तीनों की व्याख्या विशेष रूप से अपेक्षित है। नायक। सभी संस्कृत आचार्यों ने एक ही स्वर से यह स्वीकार किया है कि महाकाव्य का नायक उदात्त व्यक्ति होना चाहिए। भामह के अनुसार नायक में कुल और शास्त्राध्ययन आदि के गुण हों। दंडी के अनुसार वह चतुर और उदात्त हो। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में ही महाकाव्य का नायक इसी रूप में स्वीकार किया गया है। अरस्तु के अनुसार महाकाव्य के पात्र भद्र, वैभवशाली, यशस्वी और कुलीन होने चाहिए। यहाँ पात्र शब्द में नायक का भी सन्निवेश है, अतः यह निर्विवाद कहा जा सकता है कि महाकाव्य का नायक एक ऐसा उदात्त व्यक्ति होना चाहिए, चाहे वह दिव्य हो, अदिव्य हो या दिव्यादिव्य हो, जिसका प्रभाव समग्र समाज पर पड़े। रस। आचार्य भामह ने किसी एक रस का नामोल्लेख न करके रसायश्च सकल है पृथक कहकर सभी रसों को महाकाव्य के लिए उचित बताया है। इसका कारण यह है कि संस्कृत काव्यशास्त्र में तब अंगी रस का प्रश्न ही नहीं उठा था। दंडी ने भी रस भाव निरंतरम कहकर रस की व्यापकता की ओर संकेत किया, पर अंगी रस का प्रश्न इन्होंने भी नहीं उठाया। आचार्य विश्वनाथ ने यह स्पष्ट किया कि महाकाव्य का अंगी रस श्रृंगार, वीर या शांत में से एक होना चाहिए। भारतीय काव्यशास्त्र की भांति पाश्चात्य काव्यशास्त्र में रस का विवेचन नहीं है। कथावस्तु। महाकाव्य की कथा भी उदात्त होनी चाहिए। यह उदात्तता दो प्रकार से आ सकती है, या तो कथा का ग्रहण इतिहास से किया जाए या किसी प्रख्यात महापुरुष के जीवन पर आधारित हो। महाकाव्य की कथावस्तु की प्रभावान्विति बनाए रखने के लिए आचार्यों ने अनेक नियमों का प्रतिपादन किया है। नायक और रस की समुचित योजना भी इसी के प्रभाव को अक्षुण्ण बनाने के लिए की गई है। इनके अतिरिक्त प्रभाव को अधिक ग्राह्य बनाने के लिए इसमें नाटक संधियों की नियोजना, चतुर्वर्ग की प्राप्ति का विधान, सर्ग और छंदों का नियमन आदि किया है। इसीलिए अनेक नियमों द्वारा इसे गंभीर और व्यापक बनाने के प्रयास संस्कृत आचार्यों ने किए हैं। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में ही महाकाव्य की कथावस्तु की गरिमा को एक स्वर से स्वीकार किया गया है। WT लिखते हैं, महाकाव्यों में चरित्रों की कल्पना बहुत ही स्पष्ट और संपूर्ण रूप से की जाती है, अतः उनकी विभिन्न मनस्थितियों और समस्याओं के चित्रण के कारण महाकाव्य में नाना प्रकार के दृश्यों और गुणों का चित्रण स्वभावतः हो जाता है। इस प्रकार इसमें समग्र जीवन के कार्यकलाप जीवन कथा का रूप धारण कर लेते हैं। महाकाव्य की सफलता कवि की कल्पना शक्ति और चरित्र चित्रण पर निर्भर होती है। CM बावरा भी शब्द भेद से इसी भाव के व्यक्त करते हैं, महाकाव्य बृहदाकार कथात्मक काव्य रूप है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण और गरिमायुक्त घटनाओं का वर्णन होता है और जिसमें कुछ चरित्रों के क्रियाशील और भयंकर कार्यों से भरे जीवन की कथा होती है। उसके पढ़ने से हमें एक विशेष प्रकार का आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि घटनाएं और पात्र हमारे भीतर मनुष्य की महत्ता, गौरव और उपलब्धियों के प्रति दृढ़ आस्था उत्पन्न करते हैं। उर्वशी महाकाव्य के तत्व। महाकाव्य के तत्वों की दृष्टि से यदि उर्वशी का विवेचन किया जाए तो इसमें महाकाव्य के स्थिर ही नहीं अनेक अस्थिर लक्षण प्राप्त होते हैं। उर्वशी का नायक पुरुर्वा उदात्त है। यह राजवंशी है, सुंदरता और वीरता का आधार है। उसकी अमित सुंदरता को देखकर ही तो उर्वशी अपना सर्वस्व उसके प्रति समर्पण कर देती है, और परम सुंदर भी, ऐसा मनोमुग्धकारी तो होता नहीं समझ। महाराज, पुरुर्वा जितने सुंदर हैं उतने ही वीर हैं। उनका अपनी वीरता के प्रति दृढ़ विश्वास स्वयं उन्हीं के शब्दों में देखिए। सामने टिकते नहीं वनराज, पर्वत डोलते हैं। कांपता है कुंडली मारे समय का व्याल, मेरी बाह में मारुत करुण गजराज का बल है। सारांश में कहा जा सकता है कि एक उदात्त और व्योदात्त नायक में जिन गुणों की अपेक्षा है वे सब महाराज पुरुर्वा में मिल जाते हैं। उर्वशी की कथा ही प्रख्यात है। यह कथा इतनी पुरानी है कि वेद पुराणों के अतिरिक्त संस्कृत साहित्य में इसका खूब प्रचार रहा है, और कवि कुलगुरु कालिदास जैसे महाकवि भी इसे अपनाने का लोभ संवरण नहीं कर सके हैं। यह कथा आधिकारिक है। इसके साथ ही च्यवन ऋषि की कथा प्रासंगिक है। इस काव्य का अंगिरस श्रृंगार है जो महाकाव्य के अंगिरस के लिए स्वीकृत है। इस कथा का फल काम है। वैसे पुरुर्वा के संन्यास ग्रहण का संकेत करके कवि ने मोक्ष की ओर भी संकेत किया है। इन स्थिर लक्षणों के अतिरिक्त उर्वशी में महाकाव्य के अनेक अस्थिर लक्षणों का ही परिपालन किया गया है, जैसे प्रकृति का वर्णन, वृत्तों का वैविध्य, पर्वत, ऋतु, मुनि, स्वर्ग, यज्ञ, विवाह, पुत्र जन्म आदि। इन तत्वों के प्राप्त होने पर भी उर्वशी को महाकाव्य नहीं माना जा सकता। इसके प्रमुख कारण यह है, उर्वशी कथा सर्गों के स्थानों पर अंकों में विभाजित की गई है। भविष्य में भी महाकाव्य की कथा के अंकों में विभाजित होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि यह परिपाटी नाटक के लिए सर्वमान्य हो चुकी है। दूसरा, इसमें यत्र तत्र नाटकीय संकेत हैं। तीसरा, इसकी कथा में वह व्यापकता और विविधता नहीं है जो महाकाव्य की कथा के लिए अपेक्षित होती है। जीवन के एक पहलू केवल काम का ही सविस्तार वर्णन हुआ है। प्रथम दो अंकों में आधिकारिक कथा सूक्ष्म है, जिसके कारण महत्वपूर्ण घटनाओं का उचित अभिनिवेश न होने के कारण प्रभावान्विति शिथिल हो जाती है। इसके अतिरिक्त प्रासंगिक कथा भी सूक्ष्म है। प्रासंगिक कथा के नायक महर्षि च्यवन का तो दर्शन भी नहीं होता, न उनके मुख से कोई शब्द ही सुनने को मिलता है। कथा में घटनाओं की अपेक्षा चिंतन का प्राधान्य है, इसलिए महाकाव्योचित चरित्रों का उद्घाटन नहीं हो पाया है। चौथा, प्रारंभ से अंत तक संवादात्मक शैली अपनाई गई है। नाटक का स्वरूप। धनंजय ने नाटक के स्वरूप का जो विवेचन किया है, उसका सारांश इस प्रकार है। जिस कथा वस्तु का नायक उत्कृष्ट कोटि के सेवन करने योग्य गुणों से युक्त हो, धीरोदात्त हो, प्रतापशाली हो, कीर्त की इच्छा करने वाला हो, बड़ा ही उत्साही हो, वेद त्रयी की रक्षा करने वाला हो और प्रसिद्ध वंश वाला हो, या तो कोई राजर्षि हो या दिव्य पुरुष हो, ऐसे ही नायक वाला प्रख्यात कथा वस्तु को आधिकारिक वृत्त बनाना चाहिए। दूसरा, इस कथा वस्तु को पांच भागों में विभाजित कर लेना चाहिए। इन पांचों में संधियों की योजना करनी चाहिए। तीसरा, यदि कथानक के अनुसंधान के लिए वस्तु का विस्तार अपेक्षित तो हो, किंतु नीरस समझकर उसका परित्याग आवश्यक समझा जाए, तो उस नीरस वस्तु की सूचना देने के लिए विष्कम्भक का प्रयोग करना चाहिए। यदि प्रारंभ से ही सरस कथा हो, तो विष्कम्भक की कोई आवश्यकता नहीं होती। ऐसी दशा में आमुख का आश्रय लेकर अंक को ही प्रारंभ कर देना चाहिए। चौथा, रस के अधिक विस्तार के द्वारा वस्तु को बहुत अधिक विच्छिन्न नहीं करना चाहिए। पांचवा, श्रृंगार और वीर दोनों रसों में से एक रस को अंगी बनाना चाहिए, शेष सारे रस अंग होने चाहिए। निर्वहन संधि में अद्भुत रस का समावेश होना चाहिए। छठा, दूर का मार्ग, वध, युद्ध, विप्लव, सूरत, अनुलेपन, वस्त्र का पकड़ना आदि उत्तेजक बातों को प्रत्यक्ष नहीं दिखाना चाहिए, केवल प्रवेशक इत्यादि से इनकी सूचना दे देनी चाहिए। एक ही दिन में एक ही प्रयोजन से किए गए कार्यों को एक अंक में दिखलाना चाहिए। एक अंक में तीन या चार पात्र होने चाहिए और अंक के अंत में इन पात्रों को निकल जाना चाहिए। इस विवेचन से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं। पहला, नाटक की कथा वस्तु प्रख्यात होनी चाहिए। दूसरा, इसका नायक उद्दात्त गुणों से संपन्न होना चाहिए। तीसरा, इसमें श्रृंगार या अंगीर रस में एक रस अंगी होना चाहिए, अन्य रस सहायक रूप में हों पर रस का विस्तार कथा प्रवाह में बाधक न हो। चौथा, विष्कम्भक आवश्यक नहीं, अंक से ही वस्तु प्रारंभ की जा सकती है। पांचवा, उत्तेजक दृश्य वर्जित हैं। छठा, एक अंक में चार से अधिक पात्र नहीं होने चाहिए तथा एक ही वस्तु का एक समय में एक दिन से अधिक नहीं होना चाहिए। इन नियमों में पहले तीन नियम कथा वस्तु, नायक, अंगिरस स्थिर नियम है और शेष अस्थिर, अतः स्थिर नियमों की व्याख्या अपेक्षित है। कथा वस्तु। महाकाव्य की भांति नाटक की कथावस्तु भी या तो ऐतिहासिक होनी चाहिए या किसी प्रख्यात पुरुष से संबंधित होनी चाहिए। प्रभावान्विति के लिए इसका पांच अंकों तथा पांच संधियों, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, अवमर्श और निर्वहन में विभाजन कर लेना चाहिए। नाटक की कथावस्तु के विभाजन में तीन मुख्य आधार हैं, प्रभावान्विति की दृष्टि से, समर्पण की दृष्टि से, नाट्य धर्म की दृष्टि से। प्रभावान्विति की दृष्टि से इसके दो भेद होते हैं, आधिकारिक और प्रासंगिक। मुख्य कथा को आधिकारिक और इसकी अंगभूत गौण कथा को प्रासंगिक कहते हैं। समर्पण की दृष्टि से भी इसके दो भेद होते हैं, सूक्ष्म और दृश्य। जो वस्तु रसहीन हो वह केवल सूचित होनी चाहिए, क्योंकि उसका अभिनय कथावस्तु की प्रभावान्विति में बाधक होगा। इसके विपरीत अभिनय कथावस्तु दृश्य कहलाती है। नाट्य धर्म की दृष्टि से इसके तीन भेद होते हैं, सर्वश्राव्य, नियत श्राव्य और अश्राव्य। जिसे सुनाना सबको अभीष्ट हो वह श्रव्य श्राव्य है, जिसे कुछ निश्चित पात्रों को सुनाना ही अभीष्ट हो वह नियत श्राव्य, और जिसे किसी भी पात्र को सुनाना अभीष्ट न हो वह अश्राव्य कथावस्तु कहलाती है। अभिनय भी नाटक की कथावस्तु का प्रमुख अंग है। अभिनय चार प्रकार का होता है, आंगिक यानी अंग द्वारा संपादित, वाचिक यानी वाणी द्वारा संपादित, आहार्य यानी वेशभूषा द्वारा संपादित और सात्विक यानी मनोभावों द्वारा संपादित। नाटक की कथावस्तु की परिणति फल में होनी चाहिए। यह फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से कोई एक नायक की को प्राप्त होना चाहिए। नायक। महाकाव्य के नायक की भांति नाटक का नायक भी उदात्त गुणों से संपन्न हो। वह धीरोदात्त, प्रतापी, कीर्ति की इच्छा रखने वाला, सोत्साह, वेद त्रयी का रक्षक, प्रख्यात वंशी, राजर्षि या दिव्य पुरुष हो। धनंजय ने नाटक के नायक के लिए इन गुणों को अनिवार्य बताया है। नेता, विनीतो, मधुरस्त्यागी, दक्ष, प्रियंवदः, रक्तलोक, शुचिर्वाग्नि, दूढ़वंश, स्त्रोयिवा, बुद्धि उत्साह स्मृति प्रज्ञा कला मान समन्वित शूरो दृढ़श्च तेजस्वी शास्त्र चक्षुष धार्मिक, अर्थात नाटक का नायक विनीत मधुर त्यागी दक्ष प्रियभाषी लोकप्रिय शुचि वाग्मी रूढ़वंश स्थिर युवा बुद्धिमान उत्साही स्मृतिवान प्रज्ञावान कला संबंधित मानी शूर दृढ़ तेजस्वी शास्त्रविद और धार्मिक होना चाहिए। इन गुणों के अतिरिक्त नायक में शोभा विलास माधुर्य गांभीर्य स्थिरता ललित औदार्य आप सात्विक गुण भी माने गए हैं। नायक के चार भेद होते हैं धीर ललित धीर प्रशांत धीरोद्धत और धीरोदात्त। जो नायक निश्चित कलाओं में आसक्त सुखी और कोमल होता है उसे धीर ललित कहते हैं। सामान्य गुणों से द्विज इत्यादि को धीर प्रशांत कहते हैं। जो बहुत तेजस्वी हो अत्यंत गंभीर हो सहनशील हो मितभाषी हो स्थिर हो निरहंकारी तथा दृढ़ प्रतिज्ञ हो उसे धीरोदात्त कहते हैं। जिसमें दर्प और मात्सर्य बहुत अधिक हो जो माया और छद में लगा हुआ हो जो अहंकारी चंचल अग्र और शेखीबाज हो उसे धीरोधत्त कहते हैं। श्रृंगार संबंधी नायक तीन भेद होते हैं दक्षिण शठ और धृष्ट। जो अन्य नायिका के द्वारा अपहृत होते हुए भी प्रथम नायिका से सहृदयता का व्यवहार करता है वह दक्षिण नायक कहलाता है। जो नायक पूर्व नायिका का चुपके चुपके उपकार कर वह शठ नायक होता है और जिसे नायक के अंग व्यक्त रूप से विकृत हों उसे धृष्ट नायक कहते हैं। नायक के उपरुक्त विवेचन से असहज ही बोध हो जाता है कि नाटक की नायिका भी उदात्त होनी चाहिए। रस नाटक में श्रृंगार या वीर रस में एक रस अंगी होना चाहिए शेष रसों की नियोजना अंग रूप में होनी चाहिए। नाटक की इस विवेचना पर यदि उर्वशी को परखा जाए तो इसमें अनेक नाटकीय तत्वों की उपलब्धि होती है जैसे इसकी कथावस्तु प्रख्यात है। दूसरा इसका नायक उन सभी गुणों से संपन्न है जो नाटक के नायक के लिए अपेक्षित हैं साथ ही नायिका में भी अपेक्षित गुण मिलते हैं। इसकी कथा का विभाजन अंकों में हुआ है जिसमें यत्र तत्र नाटकीय संकेत भी हैं। इसकी कथा 5 अंकों में विभाजित है। प्रारंभ से अंत तक कथोपकथन की शैली ग्रहण की गई है। नाटक का अंगी रस श्रृंगार या वीर में कोई एक होना चाहिए इसमें श्रृंगार अंगी रस है। इस काव्य का प्रारंभ नाटकीय नियमों पर हुआ है नाटक की संध्या इसमें मिलती हैं किंतु फिर भी इसे नाटक स्वीकार नहीं किया जा सकता इसका निम्नलिखित कारण है। नाटक में कथावस्तु की विविधता और विशेषता अपेक्षित होती है इसकी कथा में इन दोनों तत्वों का अभाव है। जीवन के वैविध्य के स्थान पर जीवन की केवल एक समस्या काम को ही प्रस्तुत किया गया है समाधान उसका भी पूर्ण नहीं है। इसमें चिंतन की गंभीरता है अतः कथा का प्रवाह टूट गया है। नाटक में इतने गहन चिंतन की अपेक्षा भी नहीं होती। अभिनय नाटक की आधारशिला है इसमें इसका अभाव ही है क्योंकि इसमें रंगमंचीय संकेत नहीं है इसमें संकलन त्रय की कोई योजना नहीं है। नाट्य महाकाव्य का स्वरूप नाट्य महाकाव्य हिंदी साहित्य के लिए एकदम नवीन शब्द है। पाश्चात्य साहित्य में इस रूप में अनेक काव्य मिलते हैं जिसमें जर्मन कवि गेटे का फाउस्ट तथा अंग्रेजी कवि टॉमस हार्डी का दी डाइनेस्ट विशेष रूप से उल्लेखनीय है। नाट्य महाकाव्य में नाटक का महाकाव्य दोनों के तत्वों का मिश्रण होता है। साहित्य कोश में नाट्य महाकाव्य की परिभाषा इन शब्दों में की गई है। नाट्य महाकाव्य का वह पद्यबद्ध काव्य है जिसमें नाटक कथोपकथन की पद्धति और नाटक की संधियों से युक्त अनुवृत्ति तो होती है पर जो अभिनय नहीं होता क्योंकि उसका कथानक नाटक की अपेक्षा अधिक लंबा वैविध्यपूर्ण अवांतर कथाओं तथा अनभिनय दृश्यों से युक्त होता है। इसमें नाटक की अपेक्षा गुरुत्व और गंभीर अधिक होता है। नाट्य महाकाव्य के कथानक के लिए इस लंबाई विविधता और अवांतर कथाओं की अपेक्षा है उर्वशी में नहीं मिलती अतः इसे इस भेद के अंतर्गत भी नहीं रखा जा सकता। गीति नाट्य का स्वरूप गीति नाट्य उस काव्य को कहते हैं जिसमें नाटकीय तत्वों के साथ गीति काव्य की विशेषताएं ही सम्मिलित हो। गीति नाट्य के प्रमुख तत्व हैं पहला भावों का प्राधान्य दूसरा कथा का सौंदर्य कम भाव व्यंजना का अधिक कठोर अपरुष घटनाओं में रसों का बहिष्कार चौथा जीवन के कोमल सूक्ष्म तथा भावात्मक चित्रण पांचवा बाह्य चेष्टाएं कम मनोभाव अधिक छठा अंतर्द्वंद की प्रधानता सातवां प्रकृति के रम्य रूप का चित्रण छठा पात्रों की सीमित संख्या आठवां यत्र तत्र नाटकीय संकेत दसवां 4 या 5 दृश्य अथवा अंक 11वां अभिनेता आवश्यक नहीं 12वां संगीतात्मकता अथवा गीतों की योजना। विस्तार वैसे यहाँ केवल इतना कहना ही पर्याप्त है कि उर्वशी में सभी तत्व पूर्णतया मिलते हैं अतः कहा जा सकता है कि उर्वशी का काव्य रूप गीति नाट्य है। यह काव्य रूप हिंदी साहित्य के लिए काफ़ी जाना माना है।